Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
फल का वेद जो होता है वो किसको लेके होता है? कहा भावना के अनुकूल हो। तो अब जहां पर जिसकी जिस प्रकार की भावना है उसी प्रकार का उसे फल मिल जाए। तो जहां दुष्ट कर्म है, दुष्ट कर्म में उसकी भावना क्या है उसके अनुकूल फल मिलता है। शुभ कर्म है, उसकी भावना क्या है तत्काल अनुकूल फल मिलता है। और जहां स्वाभाविक कर्म है, न शुभ है न अशुभ है। कैसा कर्म है? का स्वाभाविक कर्म है। तो स्वाभाविक कर्म का फल क्या? प्रश्न ये आया, स्वाभाविक जो कर्म है उस कर्म का फल क्या? तो स्वाभाविक कर्म का मतलब क्या हुआ? एक तो हमारी इच्छा हुई, इच्छा के अनुकूल प्रयत्न हुआ और तद अनुकूल फल, ये हुआ। और यहां स्वाभाविक कर्म जो है शुभ अशुभ इच्छा के ऊपर निर्भर हो गए, तो वो तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म कहलाएंगे। लेकिन ये स्वाभाविक कर्म क्या हो गया? ये स्वाभाविक कर्म हो गया उपासना, स्वाभाविक कर्म हो गया निष्काम कर्म। कहा क्यों? स्वाभाविक का मतलब क्या है? स्वभाव कह दो, नैसर्गिक कह दो, प्राकृतिक कह दो, ये सब क्या है? ये पर्याय शब्द है। और इसका मतलब हुआ स्वाभाविक कर्म। तो स्वाभाविक कर्म क्या है? वहां पर उसके अंतर्गत अपने कर्तापने के अहंकार को लेकर के होने वाली इच्छा और उस इच्छा के अनुकूल होने वाला प्रियत, ये तो शुभ अशुभ दोनों कर्मों में आ जाएगा। लेकिन यहां क्या है? यहां संकेत करते हैं कि स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार या नैसर्गिकता के अनुसार वह कर्म को करता है। अब इसी बात को अन्यत्र जो है पुराण आदि के अंतर्गत कह दिया, पुंबिर दुज श्रेष्ठा स्ववर्णाश्रम विभाग सा स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। या गीता में स्मृति में लें तो से कर्मणि अविरता संसिद्धिम लभते नर, है ना? तो ये संकेत कर दिया वो संसिद्धि को प्राप्त होता। तो अब यहां पर स्वस्व कर्म तो क्या है और स्वाभाविक कर्म और वर्णाश्रम के विभाग के अनुसार कर्म, तो देखो यहां कर्ता की प्रधानता नहीं है, यहां किसकी प्रधानता है? देश काल वस्तु और अधिकारी पात्र के अनुकूल जो भी कर्म उपस्थित हो गया उस कर्म को क्या है? एक विधि मानते हुए, उस कर्म को एक स्वभाव मानते हुए, उस कर्म को प्राकृतिक मानते हुए और जो करता है तो वो कर्म क्या हो गया? वही हो गया स्वाभाविक कर्म, वही हो गया उपासना। अब आप कहें कैसे? तो देखो बच्चे की इच्छा नहीं है बाजार में जाने की, उसने कोई इच्छा नहीं और उसे अपने लिए कुछ प्रयोजन भी नहीं, लेकिन उसके पिताजी ने कहा बेटा जाओ और बाजार से अमुक वस्तु ले आओ। अब बच्चे ने क्या है पिता की आज्ञा को मान करके, एक पिता पुत्र में एक शिष्टाचार क्या है, उस शिष्टाचार के नाते और बच्चा गया और वस्तु को लेकर के आ गया। तो वहां बच्चे की अहमता नहीं थी कि मैं जाऊंगा, इच्छा भी नहीं थी अहमता पूर्वक, और जो है वो पिता की इच्छा को लेकर के, पिता ने जैसी इच्छा उपस्थित की उस इच्छा को पूरा करने के लिए और जो है वो चला जाता। तो ये जो शिष्टाचार के नाते जो प्राप्त कर्म से हुआ वो कैसा कर्म था? वो स्वाभाविक कर्म। तो वहां पिता के प्रति उसकी क्या हो गई? भक्ति हो गई। वो पिता के प्रति क्या कहलाई? यदि पुत्र मना कर देता, मना भी तो कर सकता था कि मैं नहीं जाता, मेरी इच्छा नहीं है, ये भी कह सकता, लेकिन वहां उसने नकार भी नहीं और हकार भी नहीं करके क्या किया, एक स्वभाव को लेकर के, एक शिष्टाचार के नाते, और वह पुत्र जाता है तो पिता के प्रति वो क्या कहलाए, भक्ति कहलाए, और वो कैसा कर्म कहलाएगा, स्वाभाविक कर्म कहलाएगा, और स्वाभाविक कर्म करेगा, पिता की भक्ति करेगा तो क्या होगा, तो पिता प्रसन्न होगा, पिता कहेगा हमारा पुत्र जो है शिष्टाचारी है, आज्ञा पालक है और हमारे कथना अनुसार चल रहा है, तो इसलिए उसको एक प्रसन्नता होगी। ठीक है, ये तो उदाहरण हो गए। ठीक इसी प्रकार से ये सारी सृष्टि का क्रम कहीं न कहीं से चला है, बीच में धाता इत्यादि करके कह दिया है ना, और धाता कौन है, तो ये सृष्टि को करने वाला, और उसके लिए संकेत भी कर दिया, हिरण्यगर्भः समवर्तता अग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासी सदाधार प्रथमीम द्यामुते माम कस्मै देवाय अविशाभिदेव, ये संकेत करता शास्त्र, तो वहां संकेत कर दिया जो पूर्व में था, समवर्तता अग्रे, इस सारे के सारे क्रियाक्रम से पहले, इस सारी की सारी सृष्टि से पहले, इस सारी की सारी उपस्थिति व्यक्तता से पहले कौन था, तो कहने लगे वो हिरण्य था, हिरण्य गर्भ था, और फिर कहने लगे वही क्या है, फिर क्या हुआ, कहा सारे ये भूत हो गए, भूतस्य जाता, समस्त भूतों को करने वाला भी वही, भूतस्य जाता पतिरेकासी, इसलिए सबका स्वामी, सबका रक्षण करने वाला कौन है, कहा वही है, ये संकेत कर दिया। अब जब वही है तो क्या करो, कहा उसी ने पृथ्वी को भी धारण कर लिया, उसी ने देव आदि को धारण कर लिया है ना, तो वही वही सब है, और यहां भी कहेंगे ये ओम ही सब कुछ है, और ओम की व्याहृतियों से भी यही दर्शाने वाले हैं कि उस ओम से ही सारी सृष्टि है, ओम में ही सारी सृष्टि की स्थिति है, और ओम में ही सारी सृष्टि का लय, और उसको उनकी व्याहृतियों के द्वारा क्रम से समझाने की कोशिश करेंगे आगे कहने जा रहे। तो यहां पर जो है चर्चा की गई कि अब जो है उसने जब सब कुछ किया है तो कर्ता धर्ता, जो कर्ता होगा तो भोक्ता भी कौन होगा, भाई कर्ता ही तो भोक्ता होता, और जो कर्ता ही नहीं है वो भोक्ता भी नहीं, कहीं कहीं पर जो है अकर्ता भी भोक्ता बन जाता, लेकिन कुचित ऐसा है। तो अब यहां पर संकेत करते हैं, लेकिन उसको बाद में लेना। तो अब यहां पर जो है जब सृष्टि का करने वाला वही है, स्वामी वही है, और उस स्वामी जब वही है तो हमारा फर्ज क्या है, देश काल और प्रकृति के अनुसार हमारे लिए नियम क्या है, तो कहने लगे स्वामी के ही अनुकूल चलना चाहिए, आश्रय के अनुकूल चलना चाहिए है ना। और यहां जो कल चर्चा की कि वही जल जो है कहां जाता है, अपने आश्रय में जाता है, निम्नता को देख करके निम्नता से बहता हुआ कहां पहुंचता है, अपने आश्रय की तरफ पहुंचता, और इसी प्रकार से ये सारी सृष्टि का जो चक्र चल रहा है, जिस चक्र के अंतर्गत रात दिन है, मास और उसमें भी ऋतुएं और ऋतुओं को लेकर के क्रम से संवत्सर आदि, ये जो सारा का सारा चक्र चल रहा है, तो उस चक्र का जो केंद्र है वो क्या है, तो कहने लगी आदित्यादि कह दो या संवत्सर कह दो है ना, तो उसके घूमने पर ही ये सारा का सारा फिर नीचे तक घूमता, लेकिन घूमते हुए क्या होता, तो कहने लगे दिन में, दिन जो है वो दिन क्या है, तो दिन स्वभाव सदा तो रहता नहीं, दिन भी परिवर्तनशील है, उस दिन का स्वभाव क्या है, परिवर्तित होना, तो ये दिन रात्रि परिवर्तित होते हुए कहां पहुंचते हैं, कहा मास में पहुंचते, मास में भी परिवर्तन होता है, कहा वो ऋतुओं में पहुंचता है, ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है, ऋतुएं जो है परिवर्तित होते हुए, और फिर कहां पहुंचती हैं, कहा संवत्सर में पहुंचती हैं, और इस प्रकार से फिर आगे की बाद में समझना। तो इस प्रकार से सारा का सारा परिवर्तन होते हुए अहर जर शब्द उसका संवत्सर के लिए प्रयोग कर दिया यहां, माने उसमें सब जीर्ण होते जाते हैं, इसी प्रकार से समस्त लोक, जितने भी लोक हैं वो भी क्या है, कहा वो भी इसी प्रकार से जीर्ण होते होते और क्या है, उसी में लय भाव को प्राप्त हो जाते, ये आगे क्रम से चर्चा हो जाती है। हमारे सामने तो लोग लय नहीं होते, लेकिन हम लोग तो देखते हैं, जो हमारे दृष्टि के सामने उसे तो हम देखते हैं, अन्य लोगों को हम न समझ पाए, तो इस प्रकार से सबका जो है परिवर्तन होता कहां होता है, तो कहने लगे जिस आश्रय से उनका आना हुआ और उसी आश्रय में परिवर्तित होते हुए जाना भी हो जाए। तो ये क्रिया कैसी है? ये क्रिया आप करने वाले हैं, इसके कर्ता कौन है? इसका कर्ता कौन है? कहा आप तो नहीं हूं। कहा मैं तो नहीं हूं। तो इसका कर्ता कौन है? कहा जो भी होगा, हमें पता ही नहीं कर्ता कौन, तो ईश्वर आदि कह देते। अब इसका जो कर्ता है वो सारी इस क्रिया को कर रहा है और उस क्रिया के अनुसार, उस क्रिया के चक्र में, प्रवाह में ही एक मैं हूं। और इस प्रकार से जब भावना आ जाती है, उसी प्रवाह के अंतर्गत, उसी सृष्टि के क्रम के अंतर्गत मैं हूं, तो अब जब उसी सृष्टि के क्रम के अंतर्गत हूं तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए गीता में बड़ी सुंदर चर्चा की। वहां क्या बतलाया? वहां भी चक्र की चर्चा की। क्या कहा? अन्न से प्राणी, प्राणी बतलाते हुए फिर अन्न कर दिया, बादलों से, बादलों से, और बादल कहां से? कहा यज्ञ से। यज्ञ कहां से? कर्म से। कर्म कहां से? ब्रह्म से। ब्रह्मा से, और ब्रह्मा कहां से? तो क्या कहा? अक्षर से। और अक्षर कहां है? तो कहने लगे वो तो ब्रह्म ही रूप है, सर्वरूप है, इसलिए कहां है? यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञ रूपात्मक जो क्रिया है उसमें उसकी सर्वथा प्रतिष्ठा, उसमें वो विद्यमान, ये संकेत करें। और ये चक्र बतलाते हुए फिर क्या कह दिया? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पाथ स। समझ लो क्या कहा? इस प्रकार से प्रवर्तमान जो चक्र, और चक्र भी कहां से चला तो आगे जाके श्लोक में कहते हैं, स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, तो संकेत कर दिया। कहा जो है यज्ञ को लेकर के ही उस ब्रह्मा ने क्या किया? तो यज्ञ को ही चक्र बतला दिया, और सृष्टि उसने की यज्ञ के साथ ही, उसने सृष्टि की एक चक्र के साथ में उसने सृष्टि की, और सृष्टि करते हुए पुरोवाच उसने पूर्व में ही कह दिया, है ना? तो क्या कह दिया? तो कहने लगे इस यज्ञ को जो करेगा, इस यज्ञ के क्रम में जो चले, क्या होगा? काम धुको, वो अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। और यहां पर भी संकेत कर दिया, वहां पर संकेत किया एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त यति यह, और इस चक्र के अनुसार, इस क्रम के अनुसार, इस प्रक्रिया के अनुसार, इस प्रकृति के अनुसार, इस स्वाभाविक स्थिति के अनुसार यदि जो वर्ताव नहीं करता, जो उसके अनुसार नहीं चलता, तो क्या है? तो कहने लगे अघायु, उसकी सारी आयु कैसी है? तो कहा पाप में, अघ में है। और कैसा है? इंद्रिया रामो है, वो अपनी इंद्रियों के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार और वर्त रहा है। तो उसका जीवन कैसा हो गया? का मोघम स, व्यर्थ ही उसका जीवन हो गया। अब चाहे उसको ई अचेद वेदियत करके संकेत कर दो, है ना, आत्महा करके कह दो, ये सब जो है उसी तात्पर्य को बतलाने वाले हैं। तो इस प्रकार से वहां भी जो संकेत किया गया, तो उस प्रकृति के अनुसार वर्तना, ये सारी सृष्टि का जो क्रम चल रहा है उसके कर्ता मैं नहीं, जो भी ये उपस्थिति हो रही है उसका कर्ता मैं। और ये बात जब समझ में आ जाती है तब जो है हम स्वाभाविक कर्म करने में समर्थ, तब हमारा कर्तृत्व गिर जाता है, अहम गिर जाता है, और जब अहम गिर जाता है तो अब हमारी इच्छा नहीं किंतु उस प्रकृति के अनुसार प्राप्त है, उसमें कर्तव्य बुद्धि से कर्म किया जाता है, तद अनुकूल कर्म किया जाता है, तो उसी को निष्काम कर्म भी कहते हैं और उसी को उपासना कहते हैं या उसी को स्वाभाविक कर्म कहते हैं। और वो जो स्वाभाविक कर्म है वो कर्म क्या करने वाला? तो कहने लगे वो कर्म जो है, है? क्या करने वाला? कहा अंतःकरण की शुद्धि करने वाला, या जो आश्रय है उस आश्रय की प्रसन्नता के लिए। तो आश्रय की प्रसन्नता भी क्या? वही दर्पण को स्वच्छ कब कहोगे? दर्पण की स्वच्छता क्या है? जल की स्वच्छता क्या है? उस पर कोई व्यवधान, कोई आवरण नहीं, आवरण से रहे, व्यवधान से रहे, ऐसे ही परमात्मा की प्रसन्नता का मतलब क्या है कि अपनी विविधानता को वो जो भी आवरण है उसको हटा देता है, और जब आवरण हट गया परमात्मा की प्रसन्नता हो गई, तो परमात्मा की प्रसन्नता होने पर उसका अनुग्रह भी हो जाता है ना। इसलिए यहां एक शब्द दिया प्रतिवेश, क्या संकेत किया था प्रतिवेश, और प्रतिवेश का अर्थ क्या, तो वहां अर्थ किया कि श्रम के अपनयन के लिए जो स्थान विशेष उसे क्या कहते हैं का प्रतिवेश, और वहां कहा प्रतिवेश है पाही प्रपद्वस्व, ये सब शब्द प्रयोग किए, तो संकेत किया कि आप की मैं शरण में हूं, आप जो है मेरी रक्षा करो और आप जो है मुझे प्रतिवेश कराओ, ये सब बात वहां कही। तो प्रतिवेश का मतलब है जहां पर श्रम को हटाने के लिए, श्रम की निवृत्ति के लिए जो स्थान है उस स्थान का नाम है प्रतिवेश। जैसे आप सारे दिन बिजनेस कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो तो उससे क्या होगा, कुछ श्रम होता है, थकान होती है, और जब थकान हो जाती है और थकान करने पर फिर विश्राम कहां मिलता है, शांति कहां मिलती, तो घर पर आकर के जब अपने घर में आ जाते हो तो वहां पर क्या मिलता है, कहा वहां पर फिर शांति मिल जाती। ऐसे ही संकेत यहां करते हैं कि प्रतिवेश का तात्पर्य क्या है, तो संकेत किया इस उपासना के प्रकरण में कि परमात्मा से वह प्रार्थना प्रतिवेश की करता क्यों, तो कहने लगे वही क्या है सारे श्रम के अपनयन करने का स्थल विशेष है, स्थान विशेष है, और जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो सारे श्रम की निवृत्ति। श्रम क्या है, तो नाना प्रकार के राग द्वेष आदि को लेकर के प्रवृत्तायमान होते हुए जो नाना प्रकार के सुख और दुख प्राप्त हो रहे हैं, और उन सुख दुखों के द्वारा हमारा हृदय जो है विक्षिप्त होता रहता है, मन हृदय अशांत होता रहता है, ऐसी उस शांति को प्राप्त करने के लिए, विक्षेप से रहित होने के लिए, दुखों की निवृत्ति करने के लिए, जैसे लोक में हम अपने घर में आ जाते हैं तो हमें शांति मिलती है, ठीक इसी प्रकार से यहां संकेत किया वो प्रतिवेश स्थल कोई दूसरा नहीं, वो परमात्मा ही है। ऐसे परमात्मा में, ऐसे आश्रय तत्व में जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या हमें मिलती है, का शांति। तो इसलिए ओंकार ही क्या है, का प्रतिवेश रूप है। क्यों, तो अब क्रम से संकेत किया कि ये अक्षर ही जो है सर्वत्र प्रतिष्ठित है, उसी को लेकर के यहां ओंकार की रूपता को दिखलाते हैं। तो यहां चर्चा कर रहे हैं कि ओंकार का स्वरूप क्या है जिसकी हमें उपासना करनी, और वो ब्रह्म का क्या है, कोषभूत है। क्या कह दिया, कोषभूत माने अत्यंत समीपी, जैसे म्यान जो है तलवार के लिए अत्यंत समीपी है और उसका आवरण भी है, कोष भी है, ठीक इसी प्रकार से ओंकार भी क्या है, उस परमात्मा का अत्यंत समीपी है और उसका कोष भी। तो अब यहां पर संकेत कोषभूत उस ओंकार को लेकर के उसकी उपासना की यहां चर्चा करते, और चर्चा करते हुए बतलाते हैं कि सब कुछ वही है, और सब कुछ वही है तो कहा वो सब कैसे, तो उसी को बतलाते। पहले भी कह चुके शंकुओं में जैसे है पत्तों में क्या होता, तो शंकु में करके बतला दिया जैसे पत्तों में सर्वत्र नसों की व्याप्तता होती, इसी प्रकार से वह ओंकार जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। अब कहो कि सर्वत्र व्याप्त, तो पूर्व में संधि की चर्चा की, वर्णों की बात आई, तो एक ये अक्षर ओम जो है वही सारे वर्णों में व्याप्त है, जितने स्वर हैं वो भी इस ओम से, और जितने व्यंजन हैं वो भी सब ओम से। इसलिए पाणिनी व्याकरण में पाणिनि ऋषि ने एक सूत्र लिखा और वहां वर्णों के प्रयत्न और स्थान, वर्णों के स्थान क्या है, वर्णों का प्रयत्न क्या है, और वर्णों के मनीश्वर क्या है, उदात्त अनुदात क्या है, और उसमें वर्ण में मात्राएं क्या है, ये सब चर्चा वहां शिक्षा संबंध में कर दी गई। तो वहां पर जो है संकेत किया गया वो सब कैसे है, तो स्थान क्या है, प्रयत्न क्या है, और प्रयत्न का मतलब कैसे उस वर्ण का उच्चारण होता है, कैसा प्रयत्न उसमें होता है और उसका स्थान कहां से उसका उच्चारण होता है, कितनी उसमें मात्राएं हैं, ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, या कुछ स्वर उसमें क्या है, उसमें से जो स्वर फूटता है वो क्या, तो ये सब उदात्त अनुदात्त श्रुत करके वहां पर भेज दिए। अब यहां पर संकेत किया अकोह विसर्जनीय नाम कंठ, क्या संकेत किया, अकोह विसर्जनीय नाम कंठ, ऐसा पाणिनि व्याकरण में सूत्र आया, तो वहां पर स्थान बतलाया और स्थान बतलाते हुए क्या कहा, और संबार घोष नाद विवार आदि उसके प्रयत्न बतलाए, वाहे प्रयत्न बतलाए और अंत प्रयत्न स्पष्ट अस्पष्ट विव्रत आदि संव्रत आदि वेद से उसके जो है अंतर्क प्रयत्न बतलाए, तो ये सारे प्रयत्न और जो है स्थान और उसके स्वर एकत्व को कहां से प्राप्त होते, कहां और इसका स्थान कौन है, तो कहने लगे अकूह विसर्जनिया नाम कंठा, और सूत्र का अर्थ है और क वर्ग, और वहां तो कह दिया क वर्ग ही नहीं, जितने भी वर्ग हैं का से लेकर के हकार पर्यंत जितने भी अक्षर हैं, तो कहने लगे उनका स्थान क्या है, तो कुछ का अंतर कर दिया, तो यहां पर जो है संकेत कर दिया कि उनका स्थान क्या है, कंठ। तो जैसे काका उच्चारण करेंगे तो जैसे अका उच्चारण होता है वैसे ही क का उच्चारण क ख ग घ का होगा, और वही स्थान जो है आका है वही उसका है, वही प्रयत्न भी है उसी के एक होंगे, तो इस प्रकार से अकार से ही ये सब ककार आदि सब व्यंजन, और अकार क्या है तो ओम का पहला अक्षर, इसलिए इसी प्रकार से क्रम से आगे के अक्षरों को लिया उप उपदमान या अनुमोष करके तो आगे के शब्दों को ले लिया, पकार वर्ग जो है वो उसके अंतर्गत आ जाएगा ऊ के अंतर, तो सारे वर्णों की सत्ता एक इस ओम को लेकर के है, जितने भी वर्ण हैं जितने भी चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो उन सारे वर्णों में भी मूल सत्ता किसकी है, तो अकार उकार मकार की, ओम की, ओम इस अक्षर की है, तो इसलिए कह दिया कि सर्वत्र वह ओम व्याप्त, और ये सब बतलाते हुए क्रम से फिर संकेत किया व्याहृतियों को लेकर के, और उसकी व्याहृतियों को समझा रहे हैं कि उसी ओम से भू और भुवः और श्व, ये व्याहृति, व्याहृति का तात्पर्य है विशेष रूप से जिनका आहरण हुआ है उसे ही क्या कहेंगे, व्याहृति कहेंगे, तो उस ओम से ही भू का आहरण हुआ है, भुवः का आहरण हुआ है और स्व का आहरण हुआ, क्रम से कैसे हुआ, तो अकार से भू, उकार से भुव और मकार से स्व, ये दिग्दर्शन करा रहे हैं कि वह अकार ही भू है और वह उकार ही भुव है और मकार ही स्व है, अब इनको लोक देव वेद अग्नि क्रम से जो है इनको बतलाएंगे, और सब में लोक में वेद में देव में और अग्नि आदि में सर्वत्र जो है ओम की व्याप्तता दिखलाए, ओम ही उसमें प्रधान है, और ऐसा ओम ही क्या है हमारा श्रेष्ठ कठोपनिषद ने बतलाया है, श्रेष्ठ आलंबन क्या है का ओम, और ऐसे ओम की ही हमें आलंबन बनाकर के उपासना करनी है, और ऐसे ओम की ही उपासना का यहां विधान करते हैं, अब समय हो गया तो आगे चर्चा कल करें, ओम पूर्ण।